मैं कल पर से जाने वाला रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
विष्णु ऐसा हो गए क्या रिकॉर्डिंग?
हाँ हो गए, जस्ट लगा देंगे,
पॉज करो।
हाँ
Thank you. सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गोविंद जगद्गुरु शील प्रभुपादानंद।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 7 दिनांक 7 जून 2015 स्पीकर इज ग्रेस आदियोग प्रभु।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सर सरस्वतीं व्यासं तत जयाद् मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टकी।
श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे हम लोग 10-10 अध्याय 23 श्लोक 7।
गाचरायन्तो विदुरे ओदनम् राम अच्युत ओलसत बुभुक्षित तयो दिजा ओदनम् अर्थिन यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्म वीततमा गाचरायन्तो विदुरयोदनम् राम अच्युत ओलसत बुभुक्षितो तयो दिजावदनमर्थिन यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मभीततमा गाचरायन्तो विदुरयोदनम् राम अच्युत ओलसत बुभुक्षितो तयो दिजावदनम् अर्थिनो यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मभीततमा
Thank you.
श्लोकों के शब्दार्थ ऐसे हैं, कृपया बोलिए। गा अपनी गोए चारयन्तो चराते हुए अविदुरे दूर नहीं ओदनम भोजन राम अच्युत राम तथा अच्युत ओ आपसे लसत इच्छुक है बुभुक्षितो भूखे होने के कारण तयो उनके लिए दीवजा हे ब्राह्मणों ओदनम भोजन अर्थिनो मांग रहे हैं यदि यदि श्रद्धा कोई श्रद्धा सॉरी श्रद्धा कोई श्रद्धा च तथा वो आप में यच्छत कृपा करके दें धर्मवित तमा हे धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ। ट्रांसलेशन एंड परपर्ड हे डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गोएं चरा रहे हैं। वो भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। तात्पर्य ग्वालों वालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में संदेह था, इसलिए उन्होंने बुभुक्षितो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भूखे हैं। इन बालकों को आशा थी कि ये ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को जानते होंगे। अत्रस्य खुदितं पात्रम जो कोई भी भूखा हो वो भोजन का दान पाने का पात्र है, किंतु यदि इन ब्राह्मणों ने कृष्ण तथा बलराम की सत्ता को नहीं माना तो उनकी द्युज उपाधि का अर्थ केवल दो जनों से उत्पन्न दी मतलब दो जनों से ज मतलब उत्पन्न होगा न कि दो बार जन्म लिया हुआ। जब ब्राह्मणों ने ग्वालों के पहले अनुरोध को नहीं माना तो उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंगपूर्ण शब्द में धर्मवित तमा धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादं सगण ललिता सिविशाखानुतंश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुजस्य कृपा सिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री राधा गिरिधरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पर जो आप लोग पिछले रविवार को सुने थे गोपियों के ऊपर भगवान किस प्रकार अपने आशीर्वाद किए कृपा किए, तो भगवान गोपियों के ऊपर अपने कृपा प्रदान करने के बाद तो सोचे थोड़ा मुझे वृंदावन के जंगलों के भीतर थोड़ा सा आनंद लेना है, तो ये सोचकर अपने मित्रों के साथ भगवान जंगल के भीतर प्रवेश किए। और जैसे ही जंगल के भीतर प्रवेश किए तो उन्होंने देखे वृंदावन के जंगलों में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। वृक्षों का भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का श्रेणी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे देखे वृंदावन के वृक्षों को, तुरंत उनके भीतर एक वृक्षों का गुणगान करने के लिए प्रवृत्ति जग उठा। उनके भीतर इच्छा हुआ, ये वृंदावन के जो वृक्ष है वो कोई साधारण नहीं है, ये सत्य बात है। अनेक तपस्या करने के बाद एक जीव को भले वृक्ष जोनि में होना क्यों, वृंदावन के वृक्ष जोनि प्राप्त होना ये भी बहुत तपस्या की फल है। तो इसीलिए नहीं सोचो कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये बाहर के वृक्षों की भांति है, ना, ये कोई साधारण नहीं है। वो बड़े बड़े तपस्वी मुनि लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की धाम का संग और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संग और भगवान श्री कृष्ण की संग करने के लिए वो वृंदावन में तपस्या करके वहाँ पर वृक्ष के रूप में जन्म लिए हैं। तो भगवान जानते हैं और भगवान का भक्त भी जानते हैं ये वृक्ष कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण जैसे वृंदावन के वृक्षों को दर्शन किए तो तुरंत उनके भीतर इच्छा हुआ उनके गुणगान करने के लिए। हाँ, तो ये वृक्ष जो होते हैं उनके भीतर हमेशा परोपकार की प्रवृत्ति होती है। जीव हमेशा वृक्ष ऐसा नहीं सोचता कि ये व्यक्ति मेरे तरफ आ रहा है। हाँ, एक व्यक्ति वृक्ष की तरफ आता है और वो सोचता है कि मैं थोड़ा वृक्ष के छाव में नीचे बैठकर थोड़ा सा मेरा थकान मिटाऊं, फिर उसके बाद ये वृक्षों को मैं काटूंगा। ये एक मनुष्य का विचार रहता है, लेकिन वृक्षों का इस प्रकार का विचार नहीं रहता है। वृक्ष जदियो जानता है ये व्यक्ति मुझे काटने के लिए आता है, तो फिर भी ये जानते हुए भी जान करके भी तो फिर उनको अपनी छाँव प्रदान करता है। उनके वृक्ष के नीचे जैसे वो काटने वाला व्यक्ति को भी छाँव देता है। हाँ, और वो छाँव लेने के बाद अपने थकान मिटाने के बाद वो व्यक्ति वो वृक्ष को काटता है। इसी प्रकार हमें एक वृक्ष से भी शिक्षा ले सकते हैं किस प्रकार है मनुष्य जीवन में कैसे हमें दूसरों के उपकार करें। परोपकार ये जो प्रवृत्ति है ये एक स्वर्गीय गुण है, ये भगवत गुण है, एक ब्राह्मण का ये एक गुण है, भगवान भक्तों की जो एक बहुत बड़ी गुण अनेक गुण होते हैं उनमें से परोपकार ये एक बहुत बड़ी गुण है। परोपकार वास्तविक परोपकार क्या है, एक भगवत विस्मृत जीव को भगवान का संदेश प्रदान करके भगवान के साथ उनका संबंध को जोड़ दे, भगवान के साथ ये जो उनका जो संपर्क है उस संपर्क को जोड़ देना, ये ही वास्तविक परोपकार है। गरीबों को खिला देना, भूखे को खिला देना, कि किसी को कपड़ा दे देना, किसी को दवाई दे देना, ये तो ये हमें उन वो व्यक्ति को अंत समय तक नहीं दे सकते, उनका जीवन तमाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे एक चीज दें तो बार बार उन्होंने वो इस प्रकार का दुख का सामना न करें। हमें एक व्यक्ति को ऐसे एक चीज दे जो चीज प्राप्त होने के बाद उनका जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ये जो खाने की गरीबी, शारीरिक शरीर के जो भी गरीब है वो हट जाए, ये ही वास्तविक परोपकार है। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के वृक्षों को इस प्रकार का गुणगान करते हुए तो उनके मन में फिर विचार हुआ कि मैं ये ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर थोड़ा कृपा करना चाहिए। ये ब्राह्मण की पत्नी है, ये जदियों दिखता है कि ये ब्राह्मण की पत्नी है, साधारण है, स्त्रियां जो साधारण होती है, लेकिन ये ब्राह्मण पत्नियां भी अनेक जन्मों से वो तपस्या कर रही है मेरे संग प्राप्त करने के लिए, तो मुझे ये ब्राह्मण पत्नियों को संग देना चाहिए। तो ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को पत्नियों के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पहुंचे, और ये ब्राह्मण पत्नियां दिखा जाता है तो इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके पत्नी उनका पतियों कैसे थे, कर्मकांडी थे। कर्मकांडी मतलब जो लोगों के भीतर भोग करने की प्रवृत्ति रहती है, और जो लोगों के भीतर भोग करने की प्रवृत्ति रहती है जदियो दिखता है भक्त है, लेकिन वास्तविक लोग भक्त कहा नहीं जाते हैं, भले हमें कुछ भी कर लें लेकिन भोग के प्रवृत्ति जब तक है तो योग नहीं होगा। भोग और योग वो दोनों साथ में नहीं चलते हैं, या भोग या योग। यदि भोग करोगे तो योग, योग मतलब आप भगवान के साथ जोड़ नहीं सकते, योग मतलब भगवान के साथ संबंध नाता बनाना, और जहां पर भोग है वहां पर योग नहीं हो सकता, और जहां पर योग आ गया वहां पर भोग नहीं रहेगा, भोग नहीं रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के ये जो भक्त ब्राह्मण पत्नियां भगवान के भक्त थे, लेकिन उनका जो पति लोग थे वो कर्मकांडी थे। हाँ, उनको बहुत बड़ी ज्ञान थी वेदों का, सारे वेद उनके भीतर थी, सारे वेदों की ज्ञान वो जानते थे। सारे वेदों को जानने के बाद यदि भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं तो ये वेदों का ज्ञान का क्या फायदा। हाँ, धर्म सो अनुष्ठित पुंस विश्वक से न कथासु यह न उत्पादित रहती श्रम एव ही केवलम। यदि भागवत के प्रति रुचि नहीं हो पा रही है, कि भगवान की कथा श्रवण करने के प्रति हमारा लोभ नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये क्या हो गया, श्रम एव ही केवलम। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा विश्वक सेन कथासु, विश्वक सेन भगवान श्री कृष्ण के कथा प्रति यदि हमारा रुचि नहीं होती है तो जो भी कर रहे हैं वह केवल परिश्रम है, श्रम एव ही केवलम। हाँ, तो इसीलिए हमारा भगवान की कथा के प्रति रुचि होने के लिए उपाय क्या है, ना भगवान के भक्तों की संग। यही कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि साधु संगे हरि नाम है यही मात्र चाहिए। भक्त लोग जानते हैं मुझे ये संसार में क्या वस्तु चाहिए, भले मैं बहुत ही संसार में हो लेकिन मुझे क्या चाहिए, ना साधु के संगे हरि नाम। ये चीज मिल गया किसको, वो दोनों चीज में किसी का आकर्षण हो गया तो फिर वो संसार को पार कर जाएगा। जिनको भक्तों के साथ बैठ करके भगवान का नाम लेना ये कला ये आ गया तो फिर उनके लिए संसार खतरनाक नहीं है, कोई विपत्ति का स्थान नहीं है। वो भले वो बहुत ही संसार में रहे लेकिन वो भगवत धाम में रह रहा है, वो वैकुंठ में रह रहा है, वैकुंठ में वास कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा जाता है यदि वो ये ब्राह्मण के पति ना सॉरी ये ब्राह्मण पत्नियों का जो पति थे ना सॉरी ये ब्राह्मण लोगों के भीतर वेदों की बहुत बड़ी ज्ञान थी, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते थे, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे। हाँ, सारे वेदों पाठ करने का मूल विषय वस्तु है भगवान के निकट में पहुंचना, कि भगवान को जानना, लेकिन ये सब होने के बाद भी ये ब्राह्मण लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। हाँ,
और ये ब्राह्मण के पत्नियां बड़े सरल थी, उनके भीतर कोई वेदों की ज्ञान न थी। हाँ, ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण लोग ये कर्मकांड या इतने बड़े यज्ञ क्यों कर रहे थे? ना स्वर्ग जाने के लिए। और स्वर्ग की जो भोग की व्यवस्था है, जो भोग की भोग मिलती है, ये बहुत ही संसार में भोग स्वर्ग का भोग की व्यवस्था से अति तुच्छ है। ये बहुत ही संसार में जो हमें भोग कर रहे हैं उनके कई गुणा अधिक भोग स्वर्ग में मिलती है। ये ब्राह्मणों को पता, ये विषय मालूम था, इसीलिए वो ऐसे कर्मकांड ऐसे के यज्ञ कर करके उस स्वर्ग में जाना चाह रहे थे। जोधियो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि स्त्री शूद्र स्त्रियां जो होती है और ये ब्राह्मण जो ना शूद्र जो होते हैं बड़े कम के होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भले ये पंडित है, लेकिन ये पंडितों का पत्नियां क्या तैयारी कर रहे थे? गोलक वृंदावन जाने के लिए। ये पंडितों का पत्नियां गोलक वृंदावन जाने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन उस जगह पर ये पंडित लोग कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे? स्वर्ग। उनका जो तैयारी है वो स्वर्ग जाने के लिए थी, लेकिन वो ब्राह्मण पत्नियों का जो तैयारी है, भले उनको कोई शास्त्र का जानकारी नहीं थी, वेदों की ज्ञान नहीं थी, फिर भी उनका जो तैयारी है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो इच्छा है कृष्ण प्राप्ति, वो जानना ही सब ज्ञान हो गया। वो ये ज्ञान ये जान लेना मतलब सारे ज्ञान वो व्यक्ति को हो गया। हाँ, तो जदियो भगवान कह रहे हैं कि स्त्रियां आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े ही तुच्छ है, कम है, आध्यात्मिक की दृष्टि से बड़े ही कमजोर है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है तो स्त्रियां कितने प्रबल थे भक्ति मार्ग में, कितने शक्तिशाली थे। हाँ, जदियो ये ब्राह्मण पत्नियों को कोई इतना ज्ञान न थी, लेकिन उन्होंने सुन रखी थी भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उन्होंने सुन रखी थी कि भगवान ब्रज में क्या क्या लीला कर रहे हैं। हाँ, और यही कलियुग में भगवान को प्राप्त करने की विधि है। कलियुग में भगवान के पास पहुंचने की, भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? ना भगवान के विषय में सुनना। अब प्रभुपाद जी भी यही बात बताते हैं, एक जगह में प्रभुपाद जी बताएं, हियरिंग चैंटिंग वेरी पावरफुल प्रोसेस स्पेशली इन दिस कलियुग। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्रवण और कीर्तन किसका ना भगवान का, ये इतने शक्तिशाली मार्ग है। वो दोनों मार्गों को जिन्होंने अपना लिया वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा। हियरिंग चैटिंग वेरी पावरफुल प्रोसेस। प्रभुपाद जी बताते हैं ये इतने शक्तिशाली मार्ग है। हाँ, जिन्होंने ये दोनों में से ये दोनों को जान लिया तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे तो उनके शिष्य लोग बैठे थे और देखे उनके प्रवचन के क्लास में जो क्लास चल रही थी तो बहुत कम शिष्य लोग बैठे थे। तो प्रभुपाद जी बोले बाकी लोग कहाँ गए? तो भक्त लोग बोले प्रभुपाद बाकी भक्त लोग मंदिर सफाई कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले जाओ तुरंत वो लोगों को बुला करके लेके आओ, हमें मंदिर सफाई के लिए किसी को पैसा दे करके मंदिर सफाई करा सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा दे करके यहाँ पर बैठा नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले भगवान की कथा सुनने के लिए हमें किसी को पैसा दे करके यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन मंदिर सफाई करना है तो हमें किसी को पैसा दे करके लगा ये काम करा सकते हैं, जाओ वो लोगों को बुला करके लेके आओ। और ये ब्राह्मण पत्नियां जो थी वो एक मालिनी करके एक थी मथुरा के, वो रोज आया करती थी वृंदावन फल फूल लेने के लिए। तो वो फल फूल लेकर के वो मालिनी ब्रज में जाती थी और ये ब्राह्मण पत्नियों को बेचती थी, और बेचने के बहाने में वो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला को कहा करती थी, और ये ब्राह्मण पत्नियां वो मालिनी से भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनती थी। और ये कथा को सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण देखे नहीं थे, ये भगवान को देखे नहीं थे लेकिन केवल सुने थे। अब भगवान के कथा को सुनते सुनते भगवान के प्रति उनके भीतर इतने एक प्रकार का रुचि उत्पन्न हो गई थी, भगवान को देखने की उनके भीतर इतने लालसा बढ़ गई थी, वो अपेक्षा में थी कब कृष्ण हमें दर्शन देंगे। यही ही भगवान को देखने की एक उपाय है, पहले भगवान की कथा, पहले आंखों के कानों के द्वारा भगवान को देखा जाता है, फिर बाद में आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन होती है। पहले भगवान को देखने की रास्ता कहाँ है? ना कान, फिर आंख के द्वारा हमें भगवान को दर्शन करते हैं। ये सत्य बात है। हम जब पहले भक्ति में आए भगवान के प्रति कहाँ प्रेम थी, कहाँ रुचि थी, भगवान को दर्शन करने के लिए कहाँ हमारे प्रति लोभ थी, लेकिन अभी जिनको भीतर हो गया थोड़ा बहुत, भगवान के सामने खड़े होते तो वो हटने के लिए इच्छा नहीं करते, क्योंकि हमेशा भगवान प्रति क्षण में हाँ अपने नए नए रूप में वो भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान का कथा सुनते 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 वो भगवान को अपने हृदय में देख लिया, क्योंकि नाम के रूप में भगवान को दिखाई पड़ते हैं। भगवान कलियुग में कैसे रूप में दिखाई पड़े, नाम के रूप में। जब नाम के प्रति एक व्यक्ति भक्तों का रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर भगवान वो भक्तों के सामने अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न कर ली थी, जिस प्रकार रुक्मिणी ने नारद मुनि से भगवान के विषय में सुन करके उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कर ली थी। हाँ, हमें पिछले अध्याय से सुने कि जो गोपियाँ थी कात्यायनी व्रत की थी भगवान को पाने के लिए। यदियो भक्तों को कोई और देवा देवी के आश्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि गोपियों जैसे श्रेष्ठ भक्त, गोपी जैसे इतने बड़े भक्त, वो कात्यायनी व्रत की थी किस लिए, ना भगवान को पाने के लिए। ठीक उसी पर रुक्मिणी भी हाँ भगवान द्वारकाधीश को अपने पति के रूप में पाने के लिए, हाँ अभी भी हमें गांव में, जो बॉम्बे में तो ऐसा, मुंबई शहर में तो ऐसा नहीं होता है, गांव में जो थे हम लोग देखे थे, जो लोग का विवाह होती थी वो पहले मंदिर गांव के कोई देवी मंदिर में जाती थी, हाँ देवी माता से आशीर्वाद लेती थी, हाँ ऐसा कुछ प्रथा है। तो वही प्रथा, ये प्रथा कोई सामान्य नहीं, ये वेदों में है। अब ये वेदों की प्रथा के अनुसार रुक्मिणी भी गए थे भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के पहले, हाँ देवी माता के आशीर्वाद लेने के लिए। और ये सही भी हुआ, देवादेवियों का आशीर्वाद तब काम करती है जब हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। और रुक्मिणी जब गए थे देवी माता के मंदिर में, आते ही वही रास्ते से, अपने घर नहीं पहुंचे, रास्ते से उनका किंगडम हो गया। हाँ रास्ते से, हाँ तो उनका ये हो गया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उनका किडनैप किए थे, हाँ तो हम भी ऐसा करें, नहीं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान वो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए वो सब बात चलता है, लेकिन हमें यदि ऐसे करेंगे हमें समाज में निंदा की पात्र बन जाएंगे। तो पहले ये जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र लोग, वो कहाँ आए थे, किसके पास आए थे, ब्राह्मण के पास आए थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग, ये मित्र भगवान श्री कृष्ण के मित्र लोगों को पहचान नहीं पाए। वो लोग ऐसे सोचे कि ये तो हमारा दुश्मन पार्टी का लोग है, क्योंकि ये ब्राह्मण का संपर्क कहाँ थी, कृष्ण कंस के साथ। हाँ कंस के साथ संपर्क होने के कारण, एक गलत व्यक्ति के साथ संपर्क होने के कारण हमें भगवान को जान नहीं पाते। तो उसी प्रकार यदि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण आसानी से भगवान के पास करीब जा सकता है, ब्राह्मण के भीतर इतने शक्ति है, तो सहज भगवान का भक्ति उनके भीतर होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये ब्राह्मण होने के बाद भी एक गलत व्यक्ति के साथ संपर्क होने के कारण भगवान के भेजे हुए उस शुद्ध भक्त को वो लोग नहीं पहचान पाए। और ऊपर से वो लोग कर्मकांडी थे, और वो लोग ऐसे डर रहे थे यदि हमें ये कृष्ण के मित्र लोगों को कुछ भोजन दे दें तो कृष्ण को पता हो जाए, तो ये डर भी थी। और जो व्यक्ति के भीतर भौतिक डर है, मतलब कुछ कोई प्रकार की डर है, तो इतना भक्ति मार्ग में शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। भक्त मतलब अभय, कोई प्रकार, एक भक्त को कोई प्रकार का भय नहीं है, कि भक्त का भय करने की बात ही नहीं है। भक्त का, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ रखा है, उनको ये दुनिया में कोई प्रकार की मतलब ही नहीं है। उनका जो मतलब ही है एकमात्र कृष्ण के साथ, और कृष्ण के साथ जहाँ पर मतलब होती है फिर डर की सवाल ही नहीं है। हाँ लेकिन ये ब्राह्मण लोगों ने, उनके भीतर कोई प्रकार की विषय वासना, संसार की बातें, भोग करने की बातें होने के नाते, तो वो डर रहे थे कंस को। लेकिन ये ब्राह्मण पत्नियां, उनको कोई डर नहीं थी, वो लोग शुद्ध भक्त थे, वो डर और कोई प्रकार का विचार से वो लोग परे थे। ये सत्य बात है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन, वो लोग अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही महत्व देते हैं। यदि हमारा कर्म हमें धर्म की ओर नहीं ले जा पाता, ये संसार में आकर के हमें जो कर्म करते हैं वो कर्म यदि धर्म के ओर नहीं ले जा पाता, और ये धर्म हमें वैराग्य की ओर नहीं ले जा पाता, और हमारा जो वैराग्य है हमें भगवान के सेवा के ओर नहीं ले जा पाता, तो जीवन अपि मृत ही स, और जीते ही मृत है। हाँ, न यत योयं कर्म धर्माय, हमारा कर्म यदि धर्म की ओर नहीं जाता, और न विरागाय कल्पते, और जो धर्म कर रहे हैं ये संसार में आकर के, वो धर्म के द्वारा हमारे हृदय में यदि संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं होती, कि संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होती, न विरागाय कल्पते, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाती, और न तीर्थ पद सेवया, और वो यदि भी वैराग्य आ गया थोड़े बहुत, न तीर्थ पद, और हमारा वैराग्य जो तीर्थ पद, न तीर्थ पद सेवाए, यदि हमें तीर्थ पद, भगवान के चरण को तीर्थ पद कहते हैं, यदि हमें तीर्थ पद के सेवा में नहीं जुड़ पाते तो क्या हो गया हमारा जीवन, क्या हो गया, हमें जीते ही मर गए। जीवन अपि सह अमृत, वो जीते ही अमृत है, जीवन अपि सह अमृत। और जैसे आत्मा भगवान की सेवा में लग जाता है तो तुरंत तत्क्षणात प्रसन्न हो जाती है। हाँ, और भगवान की सेवा में एक आत्मा को तभी प्रसन्नता प्राप्त होती है जब वो आत्मा भगवान की सेवा कोई हेतु न रख करके सेवा करता है। भगवान का सेवा करने के लिए दो कंडीशन है, एक है अहेतु की और दूसरा है अप्रतिहता। अहेतु की अप्रतिहता, जब एक जीवात्मा भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान वो जीवात्मा के सामने दो कंडीशन रखते हैं, एक है अहेतु की रूप में सेवा होनी चाहिए भगवान का, दूसरा है अप्रतिहता। हाँ, अहेतु की मतलब कोई हेतु रख करके भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए, भगवान का सेवा जब करते हैं कोई हेतु नहीं रहना चाहिए, हेतु रख करके भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए, और दूसरा है अप्रतिहता, अखंड रूप में भगवान का सेवा चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मंदिर आ गया, बहुत भजन कर लिया, बहुत जप तप कर लिया, ना, हाँ, निरंतर निरंतर भगवान की सेवा निरंतर चलना चाहिए, तब जाके आत्मा प्रसन्न होती है। सवय पुंसा पर धर्म यतो तो भक्ति अध्यक्ष जो अहेतु की अप्रतिहता यत तो आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा खुशी होती है, आत्मा को आनंद तब प्राप्त होती है जब वो भगवान की सेवा में कोई प्रकार का ढीलापन नहीं रखता, भगवान की सेवा में कोई आलसपन जब नहीं रखता, तब जाके आत्मा प्रकृत रूप में वास्तव रूप में सुखी हो जाता। इसीलिए भगवान ये दो बात को जीवात्मा के सामने रखते हैं, हे जीव मेरा सेवा करो लेकिन कोई मतलब रख करके सेवा मत करो, और लगे रहो मेरे सेवा में, लगे रहो। और ये सही बात है, भगवान के जो भक्त होते हैं, हमें मंगल आरती में गाते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कंटिन्यूसली क्रमागत कभी थकते नहीं, वो लगे ही रहते हैं। तब जाके इस प्रकार का सेवा प्रवृत्ति जब एक जीव के भीतर जागृत होती है, तब जाके संसार के प्रति उनके हृदय के भीतर वैराग्य उत्पन्न होती है। तब जाके उनके भी हृदय में ये संसार के प्रति कोई प्रकार का भोग करने की इच्छा नहीं रहती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन, जल्दी जल्दी तत्क्षण भक्ति में आते ही उनके हृदय के भीतर वैराग्य उत्पन्न जनयति। भगवान यहाँ पर कहा गया है, हाँ, ऋषि लोग शायद कहें, हाँ, जनयति आसु, खूब जल्दी तत्क्षण, भले वो कल आया भक्ति में लेकिन फल वो जल्दी प्राप्त कर लेगा। जनयति आसु, आसु मतलब जल्दी वैराग्यं, और क्या हो जाएगा उनके भीतर, न ज्ञान। हाँ, जब भगवान के चरण में एक जीव का भक्ति हो जाती है तो तुरंत उनके हृदय में दो चीज आ जाती है, एक है वैराग्य और दूसरा है ज्ञान। जो ज्ञान के द्वारा वो भक्त समझ जाता है ये संसार नश्वर है, ये संसार क्षणिक है। जब ये बात कुछ किसी भक्त को पता चल गया तो फिर ये संसार में कहाँ मोह रहेगा उसका, तो तुरंत उनके स्वतः उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगा। जनयति आसु, हाँ, वैराग्य, प्रकृत वैराग्य, प्रकृत ज्ञान जो जिसके जो भक्त के भीतर है वो भक्ति करेगा। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण पत्निया न सॉरी ये ब्राह्मण लोग जो भक्ति ना कर्मकांड पद्धति के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो भगवान सोचें तो वो लोगों को एक प्रकार का शिक्षा देना चाहिए, कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण और गो का बड़े हितों से है। लेकिन आज ये दो चीज के ऊपर बड़े आघात है। इसलिए जो समाज में ब्राह्मण की रक्षा नहीं है, जो समाज में ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती है और गो का रक्षा नहीं होती है, वो समाज का जल्दी ही पतन हो जाएगा, वो समाज जल्दी भ्रष्ट हो जाएगा। हो भी रही है। जो समाज में ब्राह्मण अवहेलित है, जो समाज में ब्राह्मण ना गोमाता अवहेलित है, जो समाज में छोटे बच्चे रखी सुरक्षित नहीं है, क्यों कैसे कौन उनको रक्षा करेगा? भ्रष्टाचार इतने बढ़ रही है, ऐसे बच्चों को कौन संभालेगा और ऐसे स्त्रियों को कौन देखभाल करेगा? और बढ़ रही है, ये चीजें बढ़ रही है। ब्राह्मण अवहेलित है, गो सुरक्षित नहीं है, छोटे बालक स्त्रियां या आज नेग्लेक्ट है, ये सब चीजें अवहेलित है। और वेदों में बताया गया जो समाज में इस प्रकार का सुरक्षित नहीं है ये वस्तुएं, तो समाज समझो नाश हो ही गया। ऐसे नाशवान समाज में हमें कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे ये ब्राह्मण है तो उनको मुझे कुछ करना चाहिए वो लोगों के। तो अपने जो भक्त थे भगवान के, वो भक्त थे, जाओ वो लोगों के पास जाओ। हाँ, भगवान भेजे अपने भक्तों को ब्राह्मण के पास। और ये भक्तों को भेज करके कहे जाओ तुम लोगों को भूख लगी है ना, ये ब्राह्मण को जाओ और मेरा नाम नहीं बोलना। भगवान बोल रहे हैं, भेज रहे हैं ब्राह्मण के पास, भेज रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं बोलना। यदिओ भगवान कहते अब मेरा नाम बोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मण को यदि मेरा नाम कहोगे कुछ नहीं देंगे। अब भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत करोषि यत अश्नासि यत जुषि ददासि यत यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्वत अर्पणम्। भगवान यदिओ भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो भी तपस्या करना है, जो खाना है, दो दान देना, तपस्या करना, जो भी करना है मुझे दो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा नाम वहां पर नहीं बोलना। क्योंकि क्यों कह रहे हैं ऐसे? ना भगवान जानते थे ये लोग वैष्णव नहीं है। यदि वो ब्राह्मण थे लेकिन वो वैष्णव नहीं थे। और भगवान जानते थे ये लोग ऐसे अवस्था में है, पड़े हुए हैं, वो लोग मेरा नाम उनको लोगों के मुंह में नहीं आ सकता। देखिए कितने पतित अवस्था में, कलिजुग में ब्राह्मण पहले पतित हो जाएगा, ये कलिजुग का लक्षण है। कलियोग अपना पूरा एकदम पूरा सारा शक्ति को लगा दिया ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए। कली शुरू होते ही ब्राह्मण के ऊपर चढ़ गया, वो कोई ऋषि था ना, साफ दे दिया। कलियों का ये एजेंडा है। भक्त लोग जिसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कली वहां पर बहुत बड़ा प्रचार फैला रखा है। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिशियस सेक्स कितने बढ़ रही है, ये कली का प्रचार है। भक्त लोग क्या प्रचार, कली कितना बड़ा प्रचार कर रहा है, गली गली में, गांव में ये बात फैल चुकी है। कितने लोग भगवान का भक्ति अपनाने के लिए आज के समय में तैयार है, कितने लोग इस रविवार के समय भगवान के शरण में जाओ, थिएटर में जाओ, क्लब में जाओ, पार्टी में जाओ, जुआ में जाओ, नशा में जाओ, लाइन लगी है, मारपीट है। थिएटर में पहुंचने के लिए लोग मारपीट है, अपने घर से निकलने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन कितने लोग दौड़ दौड़ के भगवान के पास आते हैं। देखिए यहाँ पर सोचिए कली अपना कितना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग है, कली का कितना शक्तिशाली प्रचार, कलियोग कितना शक्तिशाली प्रचार कर रहा है। और लोग भी आसानी से वो प्रचार में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, वही सब कर रहे हैं लोग। तो मैं क्या बता रहा, तो भगवान श्री कृष्ण मना कर दिए, जाओ कुछ भोजन मांग ले आओ, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि मैं तो एक ग्वाला हूँ, वैश्य हूँ, वैश्य को ब्राह्मण लोग दान नहीं देते हैं। और नंद महाराज के पुत्र होने के नाते तो कृष्ण वैश्य है, और एक वैश्य को, भगवान श्री कृष्ण एक वैश्य है तो वैश्य को कौन दान देगा, तो मना किए। मैं एक वैश्य हूँ और मुझे ब्राह्मण लोग दान देने के लिए राजी नहीं होंगे, तो तुम लोग काम करना, ये बलराम का नाम बता देना, क्योंकि बलराम एक क्षत्रिय है। और कभी कभी ब्राह्मण लोग अपने एक्सेस धन को एक क्षत्रिय को डोनेशन के रूप में दे सकते हैं। ब्राह्मण तो कभी ये अर्थ ये सब दान ब्राह्मण दान ले सकता है, लेकिन ये जो ब्राह्मण कभी कभी दान देता है तो क्षत्रिय को दान दे सकता है। कब किस परिस्थिति में? ना जब ब्राह्मण के पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाती है। जब ब्राह्मण के पास अधिक धन हो जाती है वो धन को वो ब्राह्मण क्षत्रिय को दान दे देना चाहिए। यदि वो नहीं देता है तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वेदों में नहीं कहा गया ब्राह्मण का संचय ब्राह्मण संचय करे। गृहस्थ संचय कर सकता है, गृहस्थ थोड़ी बहुत थोड़ी ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल गया गृहस्थ हो बहुत संचय करना है। हाँ मुझे इतना चाहिए भाई, उतना ही जितना रिक्वायर है, जितना आवश्यक है। आवश्यकता से यदि अधिक धन कोई भी संचय करता है तो उनका आध्यात्मिक जीवन में वो कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए ब्राह्मण को कभी धन संचय नहीं करना चाहिए। हाँ तो कभी कभी भगवान कहे तो ये बलराम का नाम लो, क्योंकि बलराम एक क्षत्रिय है तो वो लोगों को ये ब्राह्मण लोग दान कुछ दे सकते हैं। हाँ तो भगवान ऐसे समझा बुझा कर अपने मित्रों को ब्राह्मण के पास भेजे, लेकिन ये भक्त लोग क्या कर दिए, सब गड़बड़ कर दिए। हाँ क्योंकि भगवान के अपेक्षा भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े ही कृपाशील होते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं। तो वो भगवान के भक्त क्या देखें, अरे ये ब्राह्मण है कितने कर्मकांडी दुख में पड़े हुए हैं, उनको वहाँ से ये लोगों को निकालना चाहिए। भगवान बोले मेरा नाम मत लो, लेकिन ये भगवान के जो भक्त लोग हैं ये लोग क्या सोचे, नहीं ये ब्राह्मण को ये कर्मकांडी जो झंझट में पड़े हुए हैं वहाँ से ये लोगों को निकालना चाहिए। हाँ तो इसलिए गए सीधा जाकर के कृष्ण बलराम का नाम बता दिए, और कृष्ण बलराम का नाम बता करके वो कह रहे थे ये थोड़ी दूर में कृष्ण बलराम गाय चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है तो कुछ भोजन दे दीजिए। और ये ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, हाँ वो अच्युत स्वाहा, ओम गोविंद स्वाहा, वो स्वाहा 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 कर रहे थे, लेकिन स्वाहा वाले आकर के हाजिर है उनको कुछ देख नहीं रहे थे। वो भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से कोई ये नहीं है, वो भगवान के भक्त वो वहाँ आकर के हाँ कुछ मांग रहे, यज्ञ फल मांग रहे, यज्ञ फल देने के लिए वो पहुँच वहाँ तैयार थे, लेकिन वो ब्राह्मण लोग उनको देख नहीं रहे थे। तो ये ब्राह्मण भगवान के भक्त लोग सोचे हाँ ये लोग यज्ञ कर रहे हैं तो लोगों का कुछ विधि कुछ होगा, यज्ञ करते समय कुछ बात नहीं करने के लिए, बात नहीं करने का ऐसा कुछ विधि होगा, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़े खड़े हो जाएं। हाँ तो हमें भी कभी कभी डोनेशन दान मांगने के लिए बाहर जाते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे घर में कभी कभी पहुंच जाते हैं, हाँ हमें को बोलते हैं कि मंदिर में ऐसा है कि थोड़े ऐसा है कुछ दीजिए दान दीजिए, वो लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं कुछ बोलते नहीं है। अरे कुछ हाँ बोलो, नहीं ना बोलो, कुछ तो बोलो, हम समझ जाएंगे ये देने वाला है कि नहीं देने वाला है, कुछ समझ में आएगा हमें, नहीं तो चले जाएंगे, बैठेंगे क्यों वहाँ पर। उसी प्रकार ये भक्त लोग जो गए थे ब्राह्मण को मांग रहे थे, ये ब्राह्मण लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हाँ या ना कुछ बोल ही नहीं रहे थे। हाँ तो भक्त लोग सोचे हैं कि थोड़ा अपेक्षा कर लेंगे, हाँ कुछ बोलेंगे उनका यज्ञ कार्य हो जाने के बाद कुछ बोलेंगे, कुछ ही बोल नहीं रहे थे। तो आगे निराश होकर आगे, अरे कन्हैया क्या कहाँ भेज दिया हम लोगों को, हाँ ये लोग तो भोगों की भक्त हैं, आपका भक्त नहीं है, ये लोग भोगों की भक्त है, ये कुछ नहीं दिए, कुछ बातें ही नहीं कि हमारे पर देखे ही नहीं, देने दूर बात है, तो ऐसे लोगों के पास हम लोगों को भेज दिए। प्रहलाद महाराज ये बातों के ऊपर कहते हैं, हाँ क्या है, मतिना कृष्ण परत सोता व मिथ्य भी पद्यते अदांत गुरुव्रतानम अदांत गोभी विशतांग तमिश्रम पुनः चर्बित चर्वणानाम मतिना कृष्ण स्वतः पर मिथ्य भी पद्यते गुरुव्रतानम। हाँ जो लोग गृहव्रत है, गृहव्रत व्रत ले रखे हैं, आप लोग नहीं है, आप लोग ग्रस्त होते ही भक्त हो, आप लोगों के लिए तो आप लोग बहुत बड़े, तो जो लोग ऐसे व्रत ले रहे, गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशतांग तमिश्रम, चले जाएंगे सीधा वो जगह पे चले जाएंगे। हाँ, जो लोग ऐसे मेरा, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी उसी में अटके हुए हैं, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अदांत गोपी विशतम तमिश्रम, चले वहां चले जाएंगे। लेकिन भगवत गीता वो लोग ऐसे, वो लोग अपने ऐसे समझ रखे हैं, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा चाची, मेरे काकी नानी, बस। लेकिन भगवत गीता क्या ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, सर्व, क्या है भगवत गीता में, सर्वभूतानम वासुदेव सर्वम इति। अरे ये कौन किसका है, आप जिसको कह रहे हो पत्नी, बच्चे, काकी, नानी, चाची, दादा, बेटा, लेकिन वासुदेव सर्वम इति, ये सबके भीतर तो कृष्ण है, ये सबके भीतर तो कृष्ण है, ये किसको, उसको, उसको क्या करे मेरा, मेरा। हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं जो ये न समझ करके ऐसे लोगों को अपना रखा है, गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशतम तमिश्रम, पुनः पुनः ये कर करके आई रे, पुनः चरबित शरमणानम, ऐसे लोगों का मति, हाँ मति न कृष्ण, ऐसे लोगों का जो मति है वो नहीं लग पाएगा कृष्ण में। हाँ, भगवान भी ये बात बताते हैं, जो लोग इस संसार में भोगों में पड़े हैं वो लोग कभी शांत नहीं बन सकते, हमेशा विचलित रहेंगे। हाँ, समाधियों न विधीयते, वो समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समाधि मतलब फिक्स माइंड, जब हमारा माइंड फिक्स हो जाता है कृष्ण के चरण में, दैट इज कॉल्ड समाधि, वो उसको समाधि कहते हैं। समाधि मतलब जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो समाधि को प्राप्त कर ले, समाधियों न विधि होते है। लेकिन जो लोग भोगों के प्रति आसक्त है वो लोगों का मन भगवान में नहीं लग सकता, वो समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सत्य बात है, जितना हमें भोग, ये भौतिक संसार के प्रति आसक्त रहेंगे उतना हमारे जीवन में कष्ट अनुभव करेंगे, उतने कष्ट दुखी हो जाएंगे। भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति हमें जितने आसक्त हो रहेंगे उतना हमें दुख मिलेगा। और जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं तब तक ये संसार के आकर्षण हमारे जीवन से दूर नहीं जाता, नहीं मिटता, हमारे जीवन से नहीं मिटता। जैसे एक बच्चा मिट्टी खा रहा है, और मिट्टी खा रहा है तो वो उसका हाथ में लेकर के एक चॉकलेट पकड़ा दो, मिट्टी खा रहा है बच्चा, उनके हाथ में एक चॉकलेट दे दो। हाँ, और जैसे वो बच्चा चॉकलेट का स्वाद लेगा तत्क्षण, आपको और परिश्रम करना जरूरत नहीं है, वो तत्क्षण तो बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देगा, क्योंकि ये चॉकलेट की स्वाद उनको मिल गया है। ठीक उसी प्रकार जब तक जीवात्मा को भगवान का भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होती है तब तक ये संसार का लगे रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पर कितने भाग्यवान थे ब्राह्मण लोग, कितने भाग्यवान थे ब्राह्मण लोग। हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त लोग वहाँ वो लोगों के पास पहुँच गए थे। हाँ, और भगवान के शुद्ध भक्तों को पहचाने बिना, समझे बिना हमें भगवान को समझ नहीं पाएंगे। ये बात को नारद जी को एक बार भगवान कहे थे ना, जहाँ पर मेरा भक्त है मैं वहीं पर हूँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबको मालूम है, नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय से वाह योग जत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र दिष्टामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ कि योगियों के हृदय में नहीं हूँ, मैं कहाँ। नारद जी कहे आपका ठीक एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो आप, मैं कहाँ ढूंढू। तब भगवान बोले जत्र गायन्ति मत भक्ता, जहाँ पर मेरा भक्त मेरा बैठ करके मेरा कथा को बखानता है मैं वहीं पर अटक जाता हूँ। तत्र दिष्ट तत्र, मैं वहीं पर हूँ, मेरे खोजने की तरीका, मेरे खोजने की रास्ता ये है। तो इसीलिए ये ब्राह्मण लोग ये भक्तों, भगवान के भक्तों को न पहचान नहीं पाए। पुंडरीक की विद्यानिधि कितने बड़े भक्त थे, भगवान के भक्तों के भीतर दोष देखने के कारण तो जगन्नाथ जी उठाए पटक दिए, लगाए जोर से। पुंडरीक की विद्यानिधि एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, पूर्णी षष्ठी के दिन जगन्नाथ जी को वहाँ जगन्नाथ जी के भक्त लोग जगन्नाथ जी को ये एक मांडुआ वस्त्र पहनाते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त लोग जगन्नाथ जी के मांडुआ वस्त्र पहनाते हैं उड़ोनी षष्ठी के दिन। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब देखे तो जगन्नाथ जी के सेवक के भीतर दोष देख लिए, अद्भुत देख करके गदाधर पंडित जी को कह करके अपने घर में आए। रात को जगन्नाथ बलदेव दोनों आए, लगाए पीटा, खूब जोर पिटाई कर दिए। हाँ, और पुंडरी की विद्यानिधि जब सुबह देखें आईना में अपने मुंह, उनका शक्ल एकदम चेंज है, बदल गया एकदम। उनका मुंह जो था जगन्नाथ जी के हाथ से पिटाई खा करके, उनका मुंह एकदम बदल गया था, इतने बड़े बड़े हो गया था। आज सुबह गदाधर पंडित जब उनके पास जाकर के पहुंचे, हाँ, तो देखें वो सोए हुए हैं। हाँ, और देखें अरे ये क्या है। तो पुंडरी की विद्यानिधि बोले, कल मैं आपको जगन्नाथ जी का सेवक का भक्तों सेवक का दोस्त दिखाया ना, इसलिए जगन्नाथ जी रात को सपने में आकर के ये हालत बना दी है। हाँ, पुंडरी की विद्यानिधि जैसे कितने बड़े महान भक्त हैं, वो भी कभी कभी ऐसे भगवान के भक्तों को नहीं समझ पाते। तुला एक श्लोक है, तुलायाम लवे ने अपि न स्वर्ग न पुनः भव, भगवत भक्ति संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुत आशीष। और उससे बढ़कर के चीजें संसार में है क्या? भगवान के भक्तों के क्षण मात्र संग ये इतना बड़ी लाभ देती है एक जीव को, उसके सामने स्वर्ग प्राप्ति ये संसार के मोक्ष प्राप्ति भी तुच्छ है। भगवत भक्त क्षण मात्र संग वो मात कर देता है ये संसार से मुक्ति की लाभ और स्वर्ग की लाभ को। इसलिए हमें ये बात को बड़े गंभीर के सही ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाए ये बात को। तो हमें यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर जो आशीर्वाद किए भगवान, तो यद्यो भगवान भूखे नहीं थे, उनको भूख नहीं लग रही थी, लेकिन एक लीला की अभिप्राय रख करके ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा देने के लिए भगवान ने ये योजना बनाया, भूख लगने की लीला। भगवान को भूख लगी है तो उनके लिए क्या असंभव है, वो कुछ भी हो भूख मिटा सकते हैं। इसलिए यदि भगवान हमारे से कुछ लेते हैं तो हमारे पर कृपा करने के लिए ही लेते हैं। हाँ, तो ये ब्राह्मण पत्नियों की भांति हमारे पास जो भी कुछ है, हाँ, हमें भगवान को प्रदत्त दे करके, हाँ, ब्राह्मण पत्नियों की भांति भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो और आज के महान भक्तों की अपीयरेंस है, अपीयरेंस हाँ, प्राकट्य तिथि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त श्री बक्रेश्वर पंडित प्रभु, हाँ, ये चैतन्य लीला में एक महान भक्त रहे। बहुत बड़े कीर्तन करते थे, बहुत नृत्य करते थे, और कहते थे हाँ, जब 100 गंधर्व एक साथ गाएंगे तब जाके मैं नृत्य कर सकता हूँ, और नृत्य के द्वारा मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ। 100 गंधर्व, और गंधर्व लोग गाने में एक्सपर्ट होते हैं, 100 गंधर्व एक साथ जब गाएंगे तो अब जाके मैं जो नृत्य करूंगा ये नृत्य के द्वारा मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगा। तो समझो कितने बड़े डांसर थे, कितने बड़े नृत्य की कला नृत्य करने वाले थे। और ये बक्रेश्वर पंडित हमेशा के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के शांतिपुरी में अद्वित आचार्य के घर में कीर्तन कर रहे थे, जब महाप्रभु ये गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, जब महाप्रभु नरेंद्र सरोवर इंद्रदुम्न सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे, नवदी धाम में थे, हर समय बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। अभी ये बक्रेश्वर पंडित कौन थे? ब्रजलीला में तुंग विद्या करके गोपी थी। हाँ, तुंग विद्या करके गोपी ये जो थे, कोई तुंग विद्या गोपी चैतन्य लीला में बक्रेश्वर पंडित के रूप में प्रकट हुए थे। और ये तुंग विद्या गोपी नाचने में और गाने में बहुत ही दक्ष थे, नृत्य विशारद थे ये। और अंत समय में ये बक्रेश्वर पंडित प्रभु गुंडीचा मंदिर में, जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर में हेरा पंचमी के दिन श्री भगवान जगन्नाथ के आवेश में नृत्य करते करते वो वहीं पे अंतर्ध्यान होकर के ब्रजलीला में प्रवेश कर गए। वो अंतर्ध्यान हो गए, हाँ, गुंडीचा मंदिर में जब नृत्य कर रहे थे वहीं से वो अंतर्ध्यान हो गए, अपने चिन्मय लीला में, हाँ, भगवान की लीला में वो प्रवेश कर गए। और ये वक्रेश्वर पंडित प्रभु इतने ऐसे उनके भीतर संसार के लोगों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति कृपा थी। तो एक बार देवानंद पंडित करके एक भक्त थे, तो कुलिया में रहते थे, लेकिन श्रीवास प्रभु के प्रति अपराध करने के कारण तो उनके भीतर चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति नहीं हो पा रही थी, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनका विश्वास नहीं थी। तो ये देवानंद पंडित कुलिया ग्राम में रह रहे थे, तो देवानंद पंडित के ऊपर कृपा करने के लिए ये बक्रेश्वर पंडित उनके वहाँ गए और जाकर के उनके घर में नाच खूब नृत्य किए। और जो कृष्ण भाव में नृत्य कर रहे थे, उनका वो नृत्य करने की जो भाव है कि कृष्ण की भक्त जो लोग जब नृत्य करते हैं, वो नृत्य की जो एक आकर्षण है, वो आकर्षण प्रताप रुद्रदेव जैसे व्यक्ति को भी चमत्कृत कर दिया। हाँ, और प्रताप रुद्रदेव कहे भी थे, मैं उसके पहले ये नृत्य कीर्तन देखा, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों लोगों का जो नृत्य और कीर्तन है, ये एक अद्भुत है, कभी नहीं देखा था उसके पहले ऐसा नृत्य और कीर्तन। तो ये वक्रेश्वर पंडित प्रभु जब देवानंद पंडित के घर पर नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो उनका इस प्रकार का भावमय नृत्य कीर्तन, कृष्ण के भाव में होकर के जो नृत्य कर रहे थे, वो भावमय नृत्य कीर्तन देख करके तो आश्चर्य हो गए, चकित हो गए। और उस समय वक्रेश्वर पंडित प्रभु मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। और जैसे गिर पड़े तो वक्रेश्वर पंडित प्रभु ये देवानंद पंडित वो वक्रेश्वर पंडित प्रभु को संभाले, अपने उठाए, उनके चिन्मय दिव्य शरीर को उठा करके अपने गोद में रखे। और जैसे ही वक्रेश्वर पंडित प्रभु के आध्यात्मिक शरीर का संग हुआ देवानंद पंडित के साथ, तत्क्षण तुरंत उनके भीतर जो इस प्रकार का, वो बड़े ही भागवत पाठ करते, भागवत रोज पाठ करते थे, बड़े उदार थे, शांत थे, रोज भागवत पाठ करते थे, लेकिन भागवत को नहीं समझ पा रहे थे। और जैसे ये देवानंद पंडित बक्रेश्वर प्रभु के संग किए, शरीर का संग किए, तत्क्षण तुरंत वो भागवत को समझ गए हैं, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके हृदय में जो भक्ति है, वो भक्ति तुरंत प्रकट हो गया। और जैसे ये उनके भीतर प्रकट हुआ, तो देवानंद पंडित प्रभु वो बक्रेश्वर पंडित जी के चरण कमल का धूल को लेकर अपने कपाल में लगाए। तो उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो उनका विश्वास खो बैठे थे श्रीवास प्रभु के प्रति अपराध करने के कारण, उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके भीतर विश्वास भक्ति बनने लगा। तो कहने की तात्पर्य यह है, भगवान कभी कभी हमारे जैसे म्लेच्छों को, हमारे जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं, लेकिन हमें इतने हतभाग्य हैं ऐसे महान भक्त को न पहचान करके इस प्रकार के एक बहुत बड़ी चांस भगवान को प्राप्त करने की जो एक सुजग को हमें खो बैठते हैं। बहुत खोया, कितने जन्म से खोया, लेकिन अभी और इस जन्म में जो मिला है उनको और गंवाना नहीं चाहिए, उसको और खोना नहीं चाहिए। जो चीज़ मिला है उनको यदि हमें पकड़ने की कला हमें जान लेंगे, तब भगवान इसी जन्म में हमें प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एनी क्वेश्चन, किसी का कुछ प्रश्न? दूसरों को ब्राह्मण गरीब क्यों रहते हैं? ब्राह्मण दरिद्र भिक्खु क्यों रहता है? वो जानबूझ करके ऐसा रहता है, ये जानबूझ करके। ब्राह्मण जानता है किस परिस्थिति में रहूंगा बड़े आसानी से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, कि जानते हैं कृष्ण प्राप्ति का जो कला है ये लोगों को पता है, और जानबूझकर वो अपने को यह गरीबी अवस्था में रखते हैं, क्योंकि वह भौतिक ऐश्वर्य जो है एक प्रकार का जीव को मतवाला कर देता है, पागल बना देता है। ऐसा ये संसार में, भौतिक संसार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य आने के बाद उनके भीतर घमंड उत्पन्न नहीं हुआ। ये सड़क में झाड़ू आने वाला मेहनतर के भीतर घमंड है, बाकी तो छोड़ो। तो इसलिए ये ब्राह्मण लोग, भक्त लोग जानबूझ करके अपने को ऐसे अवस्था में रखते हैं ये भौतिक संसार में, भौतिक संसार को ठगने के लिए। हाँ, ये एक कला है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ब्राह्मण लोग दरिद्र और भिक्खु गरीब रहते हैं। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? एनी कमेंट्स? इस प्रश्न स्पिरिचुअली बहुत धनी थे। हाँ, स्पिरिचुअली तो, हाँ, स्पिरिचुअली धनी थे, लेकिन जो भौतिक की दृष्टि से जो लोगों को ठगना है वो दृष्टि से वो गरीब रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में लोग धनी किसको मानते हैं? जिसके पास धन है। उन लोगों को क्या ज्ञान है कृष्ण भक्ति जिसके पास है वो धनी व्यक्ति है। हाँ, भक्त लोग जानते हैं। हाँ, भौतिक धन जिसके पास नहीं है और कृष्ण धन है, हाँ, वो वास्तविक धनी वही है जिसके पास कृष्ण धन है, वो धनी है। लेकिन ये बात को भौतिक दृष्टि वाले लोग नहीं जान पाते हैं। ना भौतिक दृष्टि वाले क्या जानते हैं, ना भौतिक दृष्टि से जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये है वो धनी है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो धनी है, लेकिन भौतिक दृष्टि से वो गरीब है। ओके, और एनी कॉमेंट्स? किसी का कुछ कमेंट्स है तो? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
श्री कृष्ण राधे राधे।